ओम शांति। आज का टॉपिक बहुत सुंदर है, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध। ये हमारा फर्स्ट लेसन और लास्ट लेसन या लास्ट पेपर हम कह सकते हैं। दूसरे यूनिवर्सिटीज या स्कूल्स में पेपर आउट नहीं होता, क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है तो फिर दोबारा दूसरा पेपर सेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पहले से बाबा ने फाइनल क्वेश्चन पेपर क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, वो पहले से आउट किया हुआ है। फिर भी हम कितने मार्क्स लेने वाले हैं, अपने आप को देखने की जरूरत है। सब कुछ पता है, ये फाइनल पेपर ये आने वाला है, फिर भी हम कितना तैयारी किए हैं, कितना प्रिपेयर्ड है फाइनल पेपर में पास होने के लिए। जब हम कोर्स लेते हैं, कोर्स का पहला लेसन भी वही है, अपने को आत्मा समझना। जितना स्मृति है उतना हम नष्ट मोह हो सकते हैं। क्यों बाबा ये क्वेश्चन पेपर आउट किया है? क्योंकि मोह से जीत पाना इतना सहज नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कि हाँ हम नष्ट मोह हो गए, मोह जीत हो गए, लेकिन जब पेपर आता है ना तो फिर लगा अरे अरे ये भी है, अभी तक ये भी है। तो बहुत सूक्ष्म है मोह, पांच विकारों में से ये जो मोह विकार है बहुत सूक्ष्म है, गहरा है, और सभी पांचों ही विकारों का फाउंडेशन है। मोह ही अलग अलग रूप से दूसरे दूसरे विकार का रूप लेता है, है ना? तो इसीलिए एक बार हम मोह जीत हो गए तो दूसरों पर विजय पाना, जीत पाना बहुत इजी हो जाता है, है ना? और श्रीमद् भगवद गीता में भी यही ज्ञान दिया गया था अर्जुन को, जब महाभारत युद्ध करने के लिए इसमें आए थे, युद्ध स्थल में आए थे, तो मोह के कारण से वो युद्ध नहीं कर पाए थे। फिर वो ज्ञान दिया गया उनको कि हे अर्जुन, ये जो जिनको भी आप देख रहे हो वो आत्माएं हैं, ये पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। आत्माएं अनादि अविनाशी है, उनकी जो मृत्यु नहीं होती। सारा आत्मा का ज्ञान, अनादि अविनाशी ज्ञान दिया गया, फिर धीरे धीरे समझ में आई, फिर भी हिम्मत नहीं था युद्ध करने की। फिर लास्ट में क्या दिखाना पड़ा, कालों का काल बन करके विकराल जो रूप है, विराट रूप है, तो वो जब दिखाए फिर रियलाइज हुआ अर्जुन को कि चाहे मैं मारू या ना मारू, एक ना एक दिन सभी को मरना ही है, धर्म के तरफ रह करके मैं अगर युद्ध करूं तो मेरा पुण्य बन जाएगा। ये जब समझ में आई तो युद्ध करने के लिए वो तैयार हो गया। तो ये चारों, दूसरे जो चारों विकार है उस पर विजय पाना थोड़ा सा इजी है, लेकिन मोह बहुत ही गहरा है, क्योंकि उसके जो ब्रांचेस है ना बहुत ही विशाल रूप में अलग अलग जगह पर फैला हुआ है ना? उन सूक्ष्म रूपों को समझ करके हमें उसको निकालने की जरूरत है। अगर हम पांचों ही विकारों को दूसरे इस पे मोह को अटैच करके अगर देखते हैं, तो काम विकार क्या है? काम विकार अपने ही शरीर या दूसरे व्यक्ति के शरीर के प्रति आकर्षण या मोह है ना? शरीर भान का एक निम्न स्थल हम कह सकते हैं, वो विकार आ जाता है। कामनाएं, जितने कामनाएं कम होगी, वो कामनाएं क्यों आएगी, कामनाएं क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं अधूरापन है, कहीं ना कहीं हमें लगता है उसके बिना हम अधूरे हैं या इस चीज के बिना हम अधूरे हैं, तो उस व्यक्ति की हमें जरूरत है, उस व्यक्ति के बिना मैं अपाहिज हूं, मैं डिपेंडेंट हूं, निर्भर, उसके ऊपर कंप्लीटली जब निर्भर होते हैं, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का मेरे जीवन में ना होने से जो अधूरापन महसूस होता है, वही काम विकार का रूप लेता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, अभी उस पर हम जीत कैसे पाए। बाबा को सर्व संबंधों से हम याद करें, है ना। सबसे बड़ा मोह है लोगों के साथ, व्यक्तियों के साथ, हमारे जो परिवार के हैं या कोई भी नजदीक के हैं लोग, उनके साथ हमारा मोह होता है, क्योंकि उसके ऊपर हम डिपेंडेंट रहते हैं, लगता है कि उस व्यक्ति से मुझे प्राप्ति हो रही है, उस व्यक्ति का दूर होना बहुत डर लगता है, क्योंकि वो अधूरापन महसूस होता है, उस व्यक्ति का मेरे जीवन में ना होने से बहुत कुछ हम खो लेंगे, तो इसीलिए हम उस व्यक्ति को पकड़ करके रखते हैं, उसी को अटैचमेंट कहते हैं, पकड़ करके रखना, जिंदगी हमारे जिंदगी से दूर ना हो जाना हो जाए, ये पकड़ करके रखना। तो उससे हम उस पर विजय कैसे पा सकते हैं, सबसे पहली बात, बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति। यही अंतर है भक्ति मार्ग और हमारे ज्ञान में। भक्ति मार्ग में केवल कीर्तन करते आए, बोलते आए, लेकिन यहां प्रैक्टिकली बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ने की बात है। ना केवल ना बोलने की है, लेकिन फिर अनुभव, कितना अनुभव है। बहुत सारे अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने यह बार बार कही है कि सर्व संबंधों के साथ मुझे याद करो, और अपने आप को देखने की जरूरत। इन सातों ही संबंधों में से हम अक्सर कितने संबंधों से हम याद करते हैं। सात संबंध कौन से हैं बाबा के, बाबा के साथ का, मां, पिता, टीचर, सतगुरु, सखा, साजन, शिक्षक तो हो गया ना, टीचर शिक्षक हो गया ना, बच्चा, बाबा हमारा बच्चा भी है। इन सातों ही संबंधों में से अक्सर करके जब हम योग में बैठते हैं, किस संबंध से याद करते हैं, कोई ना कोई एक या दो संबंध हमारे लिए प्रिय होता है ना, फ्रेंड का संबंध होता है, या फिर पिता का संबंध होता है, किसको टीचर अच्छा लगता है, किसको सदगुरु अच्छा लगता है, किसको फ्रेंड अच्छा लगता है, लेकिन कुछ न कुछ संबंध छूट ही जाता है। बाबा ने ये क्लियरली बताया है, कोई इन सातों ही संबंधों में से कोई एक भी संबंध बाबा के साथ अगर अनुभव नहीं करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, बाबा ने स्पष्ट बताया है कि वही संबंध निमित्त बन जाता है बाबा से दूर होने के लिए, है ना, क्योंकि उस संबंध का अनुभव हमने अनुभव नहीं किया है बाबा के साथ, तो इसीलिए आत्मा में वो तड़प होती है, आत्मा में वो इच्छा होती है कि इस संबंध को मैं अनुभव करूं। तो बाबा के साथ मैंने अनुभव नहीं किया है, तो इंसानों में मैं ढूंढती रहूंगी, मेरा कोई फ्रेंड हो जाए, मैं दिल हल्का करूं, किसके सामने हल्का करूं। बाबा को अगर फ्रेंड नहीं बनाया, मैं इंसानों को मैं ढूंढ रही हूं, कौन मेरा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है ना। तो इसीलिए हर संबंध के साथ बाबा को याद करना बहुत बहुत जरूरी है। तो अपने आप को देख करके कौन सा संबंध ब्लैंक रहा है, अनुभव नहीं किया है, वो फिर देख करके अनुभव करने की कोशिश करें। क्योंकि जब वो संबंध अनुभव करते हैं, वो हर संबंध इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं। संबंध क्यों बाबा कहते हैं, संबंध के बिना हमारे इमोशंस जुड़ते नहीं हैं। केवल ज्ञान के आधार से हम बाबा को याद करें वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, लेकिन संबंध के साथ जब हम याद करते हैं वो वहां भावनाएं जुड़ी है। जहां भावनाएं जुड़ी है वहां शक्ति है, वहां ताकत है ना। तो इसीलिए सर्व संबंधों की अनुभूति बाबा के साथ करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि जो भी संबंधी है, जो भी रिलेटिव्स है, जो भी देहधारी है, उनके प्रति हमारा डिपेंडेंस नहीं है, उनके प्रति हमारा मोह नहीं है, लेकिन स्नेह बना रहेगा। इसमें भी अंतर है ना, कभी कभी हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं मोह क्या है और प्यार क्या है, और दुनिया में लोग मोह को ही प्यार समझकर बैठते हैं, है ना? तो मोह क्या है और प्यार क्या है? वो मोह में एक्सपेक्टेशंस हैं, ये मुझे मदद कर ले या कुछ मिले उस व्यक्ति से, वो मोह में ये एक्सपेक्टेशन से आश है, कोई ना कोई इच्छा है, लेकिन प्यार में निस्वार्थता है, सिर्फ देने की भावना है, वहां लेने की भावना नहीं है। स्नेह जरूर रखना है लेकिन मोह ना हो। कैसे पता चलेगा ये मोह है या स्नेह है? अगर वो व्यक्ति मेरे से अगर दूर होने की कोशिश करे मुझे बुरा नहीं लगता, अगर स्नेह है तो, प्यार है तो। अगर मोह है तो पकड़ करके रखने की ये संस्कार बना रहता है, है ना? तो इसीलिए हमेशा प्यार, वो भी कुछ दिन पहले मुझे लगता है कि लास्ट ग्रुप में एक माताजी आई और मेरे से पूछा कि बहन जी आपसे कुछ बात करनी है, कुछ सॉल्यूशन चाहिए। तो मैंने ठीक है बताइए क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरे ना दो बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है, हम मिडिल क्लास के हैं, और बेटा अभी विदेश में पढ़ाई कर रहा है और बहुत मुश्किल से पैसा सब कुछ इकट्ठा करके थोड़ा सा ये करके फिर बेटे को भेजा विदेश में पढ़ाई करने के लिए। अभी बेटी कह रही है कि मुझे भी विदेश जाना है, मुझे भी पढ़ाई करनी है विदेश में जाकर के, लेकिन हमारा तो हमारे पास पैसा इतना नहीं है एक बात, दूसरी बात यह है कि समय को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, कोरोना काल चल रहा है, कितना लंबा चलेगा ये पता नहीं है, और तमोगुणी दुनिया है, तो एटलीस्ट यहां रह रहे हैं तो बाबा के बच्चे बन करके बाबा की सेवा में लगी हुई है, पढ़ाई भी कर रही है लेकिन बाबा की सेवा में भी लगी हुई है, लेकिन फिर विदेश जाएंगी तो शायद वो थोड़ा सा बाबा से दूर हो जाए, वहां का वातावरण कैसा होगा पता नहीं, तो इसीलिए डर लग रहा है। तो इसीलिए हम कितने बार कह रहे हैं उसको, नहीं जाओ, तुम नहीं जाओ, यहाँ ही रहो, यहाँ ही पढ़ाई करो, लेकिन वो सुनती नहीं है। तो इसीलिए आप लियो योग लगाओ, मैं बहुत योग कर रही हूं, वो मेरी बेटी ना जाए तो योग में मैं करूं क्या ताकि मेरी बेटी जाए नहीं विदेश। ये राइट है, ये राइट है, हा? उस परिस्थिति में हमें क्या करना है? क्योंकि अगर हम बांध करके रखते, ये भी अटैचमेंट है, ये भी मोह है, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है ना सीमित है, लिमिटेड है। बाबा कि बुद्धि जो है वो बहुत बेहद है, और हर एक आत्मा की जो हिसाब किताब है वो अपना अपना है। हाँ, ये ज्ञान दे कि ठीक है कहीं भी जाओ लेकिन बाबा के बन के रहे, संस्कार गाइडेंस देना है, शिक्षाएं देनी है, उनको बना के रखना है, वो ठीक है, लेकिन ये बांध के रखे इंडिया में रहेगी तो फिर बाबा के बन के रहेगी, विदेश जाएगी तो बाबा से दूर हो जाएगी, किसको पता। यहां रहते रहते भी बाबा के से दूर हो सकती है, वहां जाकर के उल्टा और ही बाबा के नजदीक हो सकती है। हमने कहीं मिसाल ऐसे देखा है कि यहां भारत में रहते हुए इतना सीरियसली जो बाबा का जो श्रीमत है वो फॉलो नहीं करते थे, लेकिन वहां जाकर के इतना पक्का बन गया, इतने पक्के हो गए, हर रोज मुरली सुनना, धारणाएं में पक्की, तो सब कुछ पक्के। तो किसका रोल कहाँ है, क्या है, हम बांध करके नहीं रख सकते, है ना। तो प्यार जरूर देना है, मोह नहीं रखना है। प्यार वो चीज है जो लिबरेट करता है, मोह बांध करके रखता है, बंधन में बांध करके रखता है। तो इसलिए जब ये अंतर हमें समझ में आता, तो बाबा से शक्ति लेकर के, बाबा से प्यार लेकर के उन आत्माओं को बांटने की जरूरत है, और हर आत्मा को प्यार की जरूरत है, नहीं। और कभी कभी हम बहुत एक्सट्रीम में चले जाते, नष्ट मोह होना है तो फिर अकेले रहना, बातचीत नहीं करना, पालना ना देना, हाँ, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है ना। तो ये बैलेंस रखने की जरूरत है, कहाँ मुझे प्यार देने की जरूरत है, कहाँ मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना है, ये भी समझ जरूरी है। और दूसरे प्रकार का जो मोह है वो है अपने ही प्रति। सबसे ज्यादा मोह हर व्यक्ति का अपने साथ होता है, चाहे वो अपने देह के साथ, चाहे वो अपने स्वभाव संस्कारों के साथ, या फिर अपने आइडियाज के साथ। इतना अटैचमेंट होता है। जब देह के साथ अटैचमेंट होता है तो उनका चिन्ह क्या होता है, कैसे पता चलता है देह के साथ अटैचमेंट है मेरा, कैसे पता चलेगा? हाँ, थोड़ी बहुत हो जाती है, थोड़ा दर्द होने लगता है तो फिर इतना चिल्लाते हैं, इतना ये होता है, तो माना थोड़ा भी दर्द सहन नहीं होता, या फिर उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए, जैसे खान पान में थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होना है, जैसे भोजन के साथ अटैचमेंट भी होता है, शरीर के साथ अटैचमेंट माना वो उसमें से एक बात, एक ये भी है कि भोजन के साथ अटैचमेंट माना पर्टिकुलर ये भोजन अगर नहीं मिला तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, ऐसा भी है ना। पर्टिकुलर टेस्ट चाहिए, वो टेस्ट नहीं मिला, बहुत गुस्सा, प्लेट फेंक देना, ये कर देना, गुस्सा कर देना, ये भी मोह है ना। तो शरीर के साथ मोह माना, सबसे पहली बात भोजन को हमें चेक करने की जरूरत है। जो भोजन मिला बाबा की याद में हम भोजन कर सकते हैं। किसी को डायबिटीज होता है लेकिन स्वीट से वो दूर नहीं रह सकते हैं, इतना प्रलोभन, कितना वो उससे ऊपर नहीं आए हुए होते हैं, ये भी चेक करने की जरूरत है। भोज अपने जीभ का के ऊपर कंट्रोल कितना है हमारा। कहीं ऐसे भाई बहने हैं समर यहां आकर के कुछ महीने रह करके, कुछ साल रह करके यहां से फिर चले गए, समर्पित यहां नहीं होना है क्योंकि भोजन सूट नहीं करता। अरे इतना बड़ा भाग्य, 21 जन्मों का भाग्य देने के लिए बाबा तैयार है, एक छोटा सा त्याग नहीं कर सकते, तो फिर वही चीज बाबा से दूर लेके जाते। हमारे लिए भी सहज नहीं था एडजस्ट होना। मैं बैंगलोर से हूं, साउथ से हूं, भोजन अलग है, अलग प्रकार का भोजन, अलग प्रकार के वेदर, सब कुछ अलग, लेकिन यहां रहने के बाद हर चीज के साथ एडजस्ट करना पड़ा। भोजन सूट नहीं होता था लेकिन फिर भी बाबा की याद में बैठ करके, वाइब्रेशंस दे करके, बाबा की मदद लेकर के एडजस्ट करा दिया। बाबा कहते हैं ना, प्रकृति पर विजय होना है, वेदर भी अलग है लेकिन उस पर भी विजय पाना, किसी न किसी प्रकार का एक थोड़ा भी रग रहा, थोड़ा भी अटैचमेंट रहा, तो वही चीज यहां से बाबा से दूर कर देता है ना। और दूसरी बात, अपने विचारों के साथ अटैचमेंट, मैं ही राइट हूं, मैं जो सोच रही हूं, मैं जो कह रही हूं, मैं जो कर रही हूं, वही राइट हूं, वही राइट है, दूसरे लोग गलत है। मैं अपने स्किल के बारे में, मैं बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा ये काम कर सकती हूँ, वो काम कर सकती हूँ, तो अपने स्किल्स के साथ, अपने आइडियाज के साथ, अपने विचारों के साथ जब अटैचमेंट होता है तो प्रॉब्लम क्या होगा, क्या होगा? गुस्सा आएगा, और फिर जो मिलनसार होकर के जो सेवा करने की बात है वो नहीं हो सकता, उसमें फिर ईगो आ जाएगा। अहंकार क्या है? अहंकार अपने साथ मोह, अपने देह के साथ, अपने विचारों के साथ, अपने आइडियाज के साथ जो मोह होता है वही अहंकार का रूप ले लेता है। और अहंकारी व्यक्ति के साथ कोई भी सेवा नहीं करना चाहते, बहुत हर्ट फील करते हैं, है ना। तो वो अटैचमेंट ना रहे तो उससे ऊपर हम कैसे उठे, उस पर विजय कैसे पाए, उसका सॉल्यूशन क्या है कि जितना हो सके आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें, बार 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 दिन में, ना केवल एक या दो बार, लेकिन बार बार जब हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, इसीलिए कहते हैं ना स्मृति लब्धा, जितना हम स्मृति में रहते हैं उतना हम मोह पर जीत पा सकते हैं। कई बार हम मोह पर जीत पाने के लिए मेहनत करते हैं और बहुत मुश्किल लगने लगता है, इसके बजाय मैं हमेशा ये कहती हूं अपने आप को भरने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि जितना जितना आत्मा भरती जाएगी, आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी, उतना नष्ट मोह बनना बहुत इजी हो जाता है। इस तरफ से नहीं, उस तरफ से हम कोशिश करें, नष्ट मोह बनने का पुरुषार्थ ना करें, लेकिन स्मृति लब्धा बनने का पुरुषार्थ करें, अपने आप को भरने का पुरुषार्थ करें। जैसे कोई भी फल पेड़ में ये होता अटैच रहता है, जब तक वो पक ना जाए तब तक अटैच्ड है, लेकिन जैसे ही पूरी तरह पक जाता है वो पेड़ से अलग हो जाता है, उसको जरूरत नहीं है पेड़ की, है ना। तो जब तक वो संपूर्णतः वो पकता नहीं है तो वो उसको सार कुछ ना कुछ चाहिए पेड़ से, तो इसीलिए वो अटैच्ड है। जब पूर्ण हो गया ऑटोमेटिकली डिटैच हो गया ना। तो ऐसे ही यहां से या लोगों से हम ये पुरुषार्थ न करें नष्ट मोह होने का, लेकिन बाबा को याद करते हुए बाबा से हम सर्व शक्तियों को भरे, सर्व गुणों को भरे, सर्व संबंधों का अनुभूति करते जाएं, तो फिर आत्मा जैसे जैसे भरपूर होती जाएगी वैसे वैसे ऑटोमेटिकली सब चीजों से किनारा हो जाता है ना। इसीलिए वो दोनों चीज साथ साथ, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा जितना रहेंगे नष्ट मोह होना बहुत इजी हो जाता है। इसलिए बार बार आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना, तो उससे बहुत सारे जो मोह है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। और बहुत सूक्ष्म जो मोह है वो है संस्कार स्वभाव, अपने ही स्वभाव संस्कार के प्रति मोह। ये क्या है संस्कार स्वभाव के प्रति मोह? माना कोई भी एक संस्कार, कोई भी एक स्वभाव जो लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं और कहते हैं बहन जी या भाई आपके अंदर ये गुण बहुत अच्छा है, ये गुण बहुत अच्छा है, वही चीज मैं हर परिस्थिति में वही गुण प्रदर्शन करने की कोशिश करती हूं जहां जरूरत नहीं है तो भी। अगर मान लीजिए मेरा दिल बहुत बड़ा है, मतलब बहुत फ्राक दिल से बहुत से देती हूं या करती हूं, लेकिन जहां इकोनॉमी करना है वहां भी मैं फ्राक दिल से सब कुछ कर रही हूं, वो बैलेंस नहीं है, तो मेरा ही संस्कार फिर जो अच्छा है लेकिन गलत समय पर मैं यूज कर रही हूं, वो संस्कार वो स्वभाव मेरे लिए नेगेटिव हो जाता है ना। तो इसलिए हर गुण बैलेंस में चलता है। अब इंडिपेंडेंटली एक ही गुण मैं ज्यादा यूज करूं वो फिर मेरे लिए वीकनेस बन जाता है, कमजोरी बन जाता है। जैसे बाबा कहते हैं लव और लॉ का बैलेंस रखो। अगर मैं बहुत मीठी हूं, बहुत लवफुल हूं, बहुत, तो फिर लॉ में अप्लाई नहीं कर रही हूं, वहां बैलेंस नहीं है। तो लोग कहते आए हैं कि आप बहुत मीठे हो, बहुत प्यारे हो, आपके अंदर बहुत प्यार है, लेकिन हर परिस्थिति में प्यारी दिखाऊं लेकिन फिर लॉफुल नहीं हो, तो फिर मेरे लिए वो कमजोरी हो गया ना। तो उन स्वभाव संस्कारों को भी आइडेंटिफाई करके उससे भी मुझे हमें ऊपर उठने की जरूरत है। हर गुण बैलेंस में चलता है, लॉ लव और लॉ, और फिर दूसरी भी बहुत सारे ऐसे हैं, सत्यता सभ्यता। हम सच रहते हैं, सत्य बोलने में डरते नहीं हैं, लेकिन सभ्यता को खो लेते हैं तो फिर क्या होगा, बहुत रफली बोलना शुरू करते। मैं तो सच ही बोल रही हूं ना, जो बोल रही सच बोल रही हूं ना, बहुत रफ बोल रही हूं, लेकिन वहां सभ्यता नहीं है तो वहां फिर डिसर्विस होगा। सभ्यता ज्यादा है लेकिन सत्यता नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा, सत्य बोलने के लिए हिम्मत नहीं रहेगा कि शायद वो व्यक्ति उसको बुरा लगेगा ना, अगर मैं सच बोलूं या कुछ ऐसे डायरेक्टली बोल दूं उसको बुरा लगेगा तो इसलिए मैं सच नहीं बोल सकती हूं, तो वो भी गलत है ना। तो ऐसे लंबा लिस्ट है। तो अगर कोई भी एक गुण मेरा ज्यादा हो गया, एक संस्कार ज्यादा हो गया, वो मेरे लिए वीकनेस है। तो वो भी चेक करके उससे भी ऊपर उठना है और बैलेंस को लेकर के हमें चलने की जरूरत है। तो ये बार बार देही अभिमानी बनने का अभ्यास करें और ये हम इमर्ज करें, हमारा संस्कार आदि अनादि संस्कार को हम इमर्ज करें। वर्तमान संस्कार तो है ही, ठीक है, लेकिन उसमें कमजोरियां भी है तो अच्छे संस्कार भी है, लेकिन मेरा आदि अनादि संस्कार बहुत शुद्ध और पावरफुल है, तो वहां तक पहुंचना है। तो जब बार बार मैं वो संस्कारों को इमर्ज करती हूं तो वर्तमान जो नेगेटिव संस्कार हैं तो उस पर मैं विजय पा सकती हूं, है ना? और तीसरे प्रकार का जो मोह है वो है पदार्थों का के साथ। कई बार लोगों के साथ मोह छूट जाता है लेकिन पदार्थों के साथ मोह छूटना वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। पदार्थ माना कोई भी चीज जो हम यूज कर रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी है, पैसा है, कार है, बंगला है, या जहां रह रहे हैं स्थान से भी मोह हो जाता है, वस्तुओं से मोह हो जाता है, बेड के साथ जिस खटिए पर सो रहे हैं उस खटिए को छोड़ करके दूसरे खटिए पर हम नहीं सो सकते हैं, उसके साथ मोह हो सकता है। तो बाबा ने मधुबन निवासियों को एक मुरली में कहा था कि कबड़ के साथ भी मोह न हो, दुनिया को छोड़कर के आए हैं, टेबल कुर्सी के साथ जो टेबल मैं यूज कर रही हूँ, कबर्ड यूज कर रही हूँ, तो उसको भी चेंज करने का नौबत आएगा, समय आएगा, तो उस समय चेंज करेंगे। तो ऐसे शास्त्रों में कहानियां है ना कि एक सन्यासी अपने कमंडल छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, है ना, राजा जनक की बात चलती है वहां। राजा जनक जब उन संत के साथ वार्तालाप कर रहे थे तो उनके जो दूसरे जो महल है वो जल रहा है, तो वहां ये जो संत थे उनका सामान पड़ा था। तो राजा जी तो निश्चिंत है, ठीक है, वो देख रहे हैं सभी जो लोग हैं वहां उसको आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन संत बहुत बेचैन हो रहे थे, अरे मेरा कमंडल रह गया, मेरा एक चादर रह गया है वहां। संसार को छोड़ के आए लेकिन मोह का अटका तो कहां अटका, एक चादर में। तो ऐसे हम भी, हम ब्राह्मण भी बहुत सारे चीज छोड़ दिए हैं, काम विकार पर जीत पा लिए हैं, बहुत सारी चीजों से हम जीत पाए हैं, लेकिन फिर एक छोटी सी चीज को पकड़ करके रखे हुए होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं लोहे की जंजीरों को काट के आए हैं, लेकिन सोने की जो जंजीरें हैं पतले होते हैं लेकिन बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, राइट, तो उसको पकड़ करके रखे हुए हैं। तो वो सोने की जंजीर कौन सा है, व्यक्ति है या वस्तु है? व्यक्तियों से तो वैराग्य हो जाता है क्योंकि इतना अभ्यास कर रहे हैं, इतना साक्षीपन का अभ्यास कर रहे हैं, पांचों स्वरूपों का अभ्यास कर रहे हैं, हमको पता है 84 जन्म हमने लिए हैं, हर व्यक्ति का रोल हम देख रहे हैं, तो वो लोगों के साथ डिटैचमेंट आना बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। लेकिन चैलेंजिंग बात ये होता है अपने साथ और वस्तुओं के साथ, चीजों के साथ। तो इनसे हमें निर्मोही रहना, अनासक्त वृत्ति, आंख भी न डूबे कहीं भी। चीजों में से बहुत ज्यादा आजकल जो अटैचमेंट है वो कौन सा है, मोबाइल के साथ, है ना, मोबाइल के साथ अटैचमेंट इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, और सब कुछ डिटैच, सब चीजों से डिटैच हो गए, ठीक है, खटिया भी कैसे भी मिल गया, ठीक है, भोजन भी कैसे भी मिल गया, ठीक है, लेकिन मोबाइल, मोबाइल छूटता नहीं है, है ना। योग में भी बैठे हुए होते हैं, कोई चेक कर रहे हैं अपना मैसेजेस, यहां बैठ करके दिखाई दे रहा है, लाल लाइट तो है और पता चलता है ये भी मोबाइल देख रहे हैं, ये भी मोबाइल देख रहे हैं, ये भी मोबाइल देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो पता चल रहा है कितने लोग मोबाइल्स देख रहे हैं, यहां से बैठ करके पता चलता है। योग में बैठे हैं माना एकदम उस आनंद की अनुभूति में बैठे या मोबाइल में बुद्धि जाता रहा है, मोबाइल में बाबा को देखते हैं, क्या बात है। या संगठन में बैठ करके बाबा को याद करें, या फिर मोबाइल में बाबा को याद करें, या मैसेजेस देके, हाँ वो भी बीके मैसेजेस भी होंगे, हो सकता है, लेकिन फिर भी कितना एडिक्टेड है। केवल ये मोह नहीं है लेकिन एडिक्शन बन चुका है, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर इससे हम मोह नहीं तोड़ा तो क्या होगा, क्या होगा, भविष्य देख सकते हो अपना, नहीं तोड़ा तो क्या होगा। सोशल मीडिया के साथ, चाहे वो मोबाइल, चाहे यूट्यूब, चाहे वो टीवी सीरियल्स, कुछ भी जो एक्सटर्नल जो हम मीडिया का को कंज्यूम कर रहे हैं, इतना ज्यादा लेवल में हम कंज्यूम कर रहे हैं मीडिया से, अगर एकदम वो बंद हो गया तो क्या होगा, पागल हो जाएंगे, क्या करना है वो पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए अभी से अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल, राजयोगी है ना, योगी जीवन है हमारा, जितना जरूरत है उतना यूज करो। बाबा कहते ये नहीं कहते यूज बिल्कुल नहीं करो, एकदम सन्यासी बन जाओ, ये नहीं कहेंगे हम, राजयोगी है, जब चीज है उसको जितना यूज करना है उतना यूज करें, लेकिन ओवर यूज करने से हमें बहुत तकलीफ होगी आगे चल करके। कोरोना काल में हम सब कुछ ठीक रहा, हमारा सब कुछ, क्यों, चाहे वो बीकेज है या फिर नॉन बीके है, उस कोरोना काल से निकल गए क्योंकि सोशल मीडिया था, नेटफ्लिक्स, पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया में बैठ करके टाइम स्पेंड करते थे, सीरियल्स देखते थे, फिल्म्स देखते थे, जो भी कुछ भी देखते, और बीकेएस क्लासेस सुनते थे, जो भी है उसके कारण से वो समय कैसा बीता हमें पता ही नहीं चला। अगर दोबारा ऐसा कुछ समय आया लेकिन इंटरनेट नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा? ऐसे सिचुएशन जरूर आने वाला है, ऐसे परिस्थितियां आने वाली हैं। लेकिन अगर मैं इतना एडिक्टेड हूं सोशल मीडिया के साथ, तो फिर हमारे हालत बहुत खराब हो जाएगी। कोई ऐसे स्टडीज भी ऐसे कुछ कोई कह रहे थे, तो ये स्टडी किया गया है, एक ग्रुप को लिया और उनको कहा, दो चॉइसेस दिया उनको, अरे 15 मिनट आप साइलेंस में बैठो, कुछ ना करो, साइलेंस में बैठो, या फिर आप 15 मिनट साइलेंस में नहीं बैठ सकते हैं तो फिर आप शॉक लो। शॉक देते हैं ना, जैसे शॉक्स, शॉक लो। और आश्चर्य की बात यह है, मेजॉरिटी लोग शॉक प्रिफर किया। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है 15 मिनट बैठ करके करना क्या है, उनको डरावना लगता है 15 मिनट कुछ भी ना करे, साइलेंस में बैठे, उनको डरावना लगता है और पता ही नहीं है क्या सोचना है। क्योंकि अगर चुपचाप बैठेंगे, उनको पता है कि पता नहीं पास्ट के बहुत सारे भयानक बातें याद आएगी, बहुत सारे ऐसे दर्दनाक बातें याद आएगी, तो इसीलिए कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए डिप्रेशन, इतने सारे मेंटल डिसीजेस क्यों हो रहे हैं दुनिया में, क्योंकि एडिक्शन है ना। तो हम बीके बनने के बाद, बाबा के बच्चे बनने के बाद भी हम वही कर रहे हैं, तो हमारे में और उनमें क्या अंतर है फिर, है ना? ये स्मृति जागृत करे, हम राजयोगी हैं, स्वराज्य अधिकारी है, कर्मेंद्रियां जीत है, जब चाहे तब इन चीजों को मैं यूज करती हूं और जब चाहे नहीं भी यूज कर सकती हूं, उनके अधीन नहीं है, हम मालिक हैं। मालिकपन की स्मृति को जागृत करिए, तब जाकर के इन सभी चीजों से हम मुक्त हो सकते हैं। और इसके साथ साथ और बहुत सारे सूक्ष्म सूक्ष्म जो संस्कार है, मोह है, वो जागृत हो जाता है। जैसे अगर कुछ नहीं है करने के लिए, फिर क्या होगा, व्यर्थ में हमारा अटैचमेंट, गॉसिप, इसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, व्यर्थ में हमारा मोह जाता है। अगर व्यर्थ में जाते, अटपटी चीज, चटपटी चीज मिली नहीं, तो फिर बेचैनी हो जाते हैं, है ना? तो वो भी जितना हो सके, संगम युग का समय है, अपने जो संकल्प है, बोल है, कर्म है, जितना हम सफल कर सके सफल करते जाए, व्यर्थ न गवाएं। बीके बनने के बाद नेगेटिव चीजों में जाना थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन व्यर्थ चीजों में जाना हम शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अटपटी चीज है, चटपटी बात है, तो इसीलिए वो भी ना करें, क्योंकि उसके साथ भी अटैचमेंट हो जाना शुरू होता है। जब अटपटी चीजें बातें करने लगते हैं, अच्छा फील गुड फैक्टर आता है ना, अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? जब किसी की बुराई करते हैं, अच्छा क्यों लगता है? इसने ना ऐसा किया, उसने ना ऐसा किया, उसने ना बहुत गुस्से वाली, ये जब बुराई करते हैं तो क्यों अच्छा लगता है खुद को? क्योंकि खुद को अच्छा समझते हैं, खुद में कोई कमजोरी नजर नहीं आ रहा है, दूसरों को नीचा देखते हैं, खुद को बहुत अच्छा लगता है, उससे तो मैं अच्छी हूं। खुद की कमजोरी नजर नहीं आ रहा है, उस पर नजर नहीं जा रहा है, लेकिन दूसरों की कमजोरियों पर नजर जा रहा है, तो इसीलिए अच्छा लगता है ना? और फिर वो करते करते क्या होगा, दूसरों की कमजोरियां देखते हुए, दूसरों की बुराइयां करते करते क्या होगा? बाबा ने बहुत सारे मुरलियों में ये कही है कि बुराइयां करते करते उनकी कमजोरी हमारे में दिखाई देने लगती है। वो अट्रैक्ट करते हैं ना, जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं वही बात को हम अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, और वही बात मेरा संस्कार बन जाता है। तो इसीलिए उससे भी हमें ऊपर उठने की जरूरत है। और फिर नेक्स्ट प्रकार का जो मोह है वो है प्रॉब्लम्स के साथ मोह। प्रॉब्लम्स नहीं है, समस्या नहीं है तो थोड़ा सा खाली खाली लगता है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा जीवन, जिंदगी अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रहा है, तो कुछ तो कमी है। आदत पड़ गई है ना कुछ प्रॉब्लम्स जिंदगी में देखने की। प्रॉब्लम्स के बिना भी हम रह सकते हैं बाबा का वो आनंद, क्योंकि क्या है, क्यों वो संस्कार है, क्योंकि छोटी छोटी बातों को बड़ा करने का संस्कार है। बाबा कहते हैं पहाड़ को राई बनाओ, राई को फिर रुई बनाओ, लेकिन उल्टा क्या होता है, रुई को राई बनाते हैं, राई को पहाड़ बनाने का संस्कार है। कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात है, उसी को लेकर के सारा दिन सोच रहे हैं। कुछ भी कुछ है ही नहीं ना सोचने के लिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है, छोटे से प्रॉब्लम को लेकर के उसी का वर्णन, उसी का, अरे बाप रे इतना सारा प्रॉब्लम है, इतना ये है वो है। क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, छोटे प्रॉब्लम को पकड़ करके, क्या वो संस्कार है? तो इसलिए बड़े बड़े प्रॉब्लम को भी छोटा बनाने का संस्कार हमें करना बनाना है। उससे क्या होगा, आगे चल करके भले कितने भी बड़े प्रॉब्लम्स हो, समस्याएं आए, लेकिन उसमें हम घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हिम्मत के साथ उसको सामना करेंगे और दूसरों को भी हम मदद करते चलते हैं। किसी को अगर कैंसर है वो भी बाबा के याद में निश्चिंत है, वो एक्सेप्ट किए हुए, लेकिन एक व्यक्ति को थोड़ा बुखार क्या आ गया, सारे लोग, घर के सारे लोगों को सिर पे उठा के रख दिया, अरे बाप रे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, छोटे से प्रॉब्लम है ना। तो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को छोटा बनाने का अभ्यास करें, ना कि छोटे प्रॉब्लम्स को बड़ा बनाने का संस्कार। और नेक्स्ट जो मैं मोह बताने जा रही हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, अपनी जवाबदारियों के प्रति मोह है? है? जवाबदारियों के प्रति मोह है? हाँ, उसके बारे में रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन चिंता, जब मोह होता है तो चिंता नजर आता है। यहां बैठे बैठे वहां क्या कैसे करना, क्या करना, यहां हर चीज इंस्ट्रक्शंस यहां से जा रहा है। लास्ट ईयर एक बहन मिली, विदेश की है, वहां लोग हैं सब कुछ संभालने के लिए, फिर भी यहां बैठे बैठे भोग क्या बनाना है, कौन मुरली पढ़ेंगे, कौन क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, सब कुछ यहां से इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं। क्यों? क्यों? लौकिक में भी ऐसा हो सकता है, भले वहां लोग हैं संभालने के लिए, फिर भी यहां बैठे बैठे सब कुछ इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हैं। छोड़ो तो छूटे ना, वो कब वो सक्षम बनेंगे, कब वो लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? आप छोड़ेंगे तो फिर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आप छोड़ेंगे ही नहीं, पकड़ करके रखेंगे तो उनको सक्षम कैसे बनाएंगे, कैपेबल कैसे बनाएंगे? क्यों ऐसी आदत है, क्यों ऐसा संस्कार है, क्यों मोह है रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति भी, क्यों है, कारण क्या है? हाँ, इनसेक्योर फीलिंग, असुरक्षित महसूस करना। अगर मैं छोड़ दूं कहीं, मैं मेरे को फिर पूछे ही नहीं लोग, मेरा फिर ये नहीं रहेगा, मेरा इंचार्ज बना नहीं रहेगा, मेरा वो बॉसपन, मेरे को मानेंगे नहीं कोई लोग, फिर इनसिक्योर। वो इनसिक्योरिटी के कारण से बहुत सारी गलतियां हम करते हैं। तो वो इनसिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि यहां खोखलापन है, आत्मा में खोखलापन है। बाबा से जब हम भरते हैं तो वहां कोई भी हमें इनसिक्योरिटी नहीं है फीलिंग, ठीक है ना। हर कोई आगे बढ़े, हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हर कोई सेवा करे, हर कोई ये करे। जब छोड़ेंगे तो बड़ी सेवा मिलेगी, अगर छोड़ेंगे ही नहीं तो बड़ी सेवा भी नहीं मिलेगी। बहुत साल पहले सूरज भाई के क्लास में बहुत सुंदर बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो नया नया रसगुल्ला बनाना सीखा था, क्योंकि बहुत सारे डिशेस नहीं होता था, डिशेस नहीं बनाते थे, तो नया नया रसगुल्ला बनाना सीखा था। तो वो उनको वाह वाह करने लगे, वाह आप बहुत अच्छा रसगुल्ला बनाते हो, ये बनाते हो। तो ठीक है, दूसरों को भी सिखाओ। अगर मैं दूसरों को सिखा दूं तो मेरा महत्व नहीं रहेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो मैं दूसरों को सिखा दूं तो फिर मेरा महत्व नहीं रहेगा, तो फिर सिखाएंगे नहीं। लेकिन जो सिखाते जाएंगे, दूसरों को इतना एफिशिएंट बनाएंगे, दूसरी सेवा इनको मिलता जाएगा। वही सेवा, नहीं तो फिर वही सेवा आज तक करते रहेंगे। समझ में आई बात? तो जितना हम सीखे हैं उतना दूसरों को सिखाते जाएं, बढ़ाते जाएं, तभी दादियां बनी। जानकी दादी जब विदेश में गए थे तो उनको इंग्लिश नहीं आता था। जयंती बहन इंग्लिश में क्लास कराते थे, लेकिन फिर दादी क्या करते थे, वो क्लास कराते थे, कोर्स कराते थे जयंती बहन, और दादी बैठ करके भोजन बनाते थे, भोग बनाते थे और उनको प्यार से खिलाते थे। ये इनसिक्योर फीलिंग नहीं था कि ये आगे बढ़ जाएगी तो मेरा महत्व क्या रहेगा, है ना। तो जब हम कॉन्फिडेंट हैं, हम भरपूर हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरे से तो मिलता जाएगा, मैं ऑटोमेटिकली बड़ी बनूंगी। ऐसा नहीं कि पकड़ करके रखने से मैं बड़ी बनूं, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए जितने किनारे हैं हमारे, चाहे व्यक्ति है, वस्तु है, सेवा है, जो भी चीजें हैं, उनसे जितना हम किनारा करते जाएंगे, अपने आप को फ्री करते जाएंगे, हम उड़ सकते हैं और नष्ट मोह हो सकते हैं, फरिश्ते बन सकते हैं। फरिश्ता वही है जो नष्ट मोह है ना, जो फ्रेश पर नहीं है लेकिन ऊपर उड़ सकते हैं। अगर हमें भी फरिश्ता बनना है तो फिर हर किनारे से हमें अपने आप को फ्री करने की जरूरत है। किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं, इनसिक्योर फीलिंग नहीं। बाबा मेरा, मैं बाबा का, मैं और मेरा कौन है? नारी जानकी हमेशा वही कहते हैं ना, मैं कौन और मेरा कौन। ये दो चीज अगर हमारा हमें याद रहे कि मैं कौन, मेरा कौन, बाबा को संसार बनाए, बाबा से लेने की भावना रखे, बाबा जैसे चलाए वैसे चलने की आदत डाले, आदत की बात है, बाबा जैसे चलाए वैसे चलने की आदत डाले तो हर चीज इजी होता जाएगा, तो अंतिम स्थिति हमारा बहुत सहज हो जाएगा। अंत मते सो गते कहते हैं ना बाबा, तो अंतिम स्थिति हमारा बहुत इजीली, जैसे मक्खन से बाल निकला तो ऐसे हो जाएगा बहुत इजीली। हमारे अंतिम स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। सभी दादियों को जब हम देखते जाए, चाहे प्रकाशमणि दादी है, चाहे दादी जानकी है, तो उनके अंतिम स्थिति, चलो बाबा को तो नहीं देखा लेकिन दादियों को देखा, एकदम निर्लिप्त अवस्था, एकदम डिटैच्ड। प्यार भी देते थे लेकिन एकदम डिटैच्ड, है ना। न्यारे और प्यारेपन का अभ्यास अभी से करने की जरूरत है। अभी हमारे पास 15 मिनट है, कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। माइक है यहाँ।
माइक रखा है, कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं, माइक दे रहे हैं।
ओम शांति। दीदी, जैसे आपने सीक्वेंस बताया कि हमें सबसे पहले
है, आ रहा है, आ रहा है,
तो जो हमारा आपने नष्टो मोह की जो बात करी, पांच विकार जो हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब, तो हमें सीक्वेंस में नंबर वन किसको रखना है या फिर सबको एक साथ जीतना है? मतलब इसमें थोड़ा सा ये है कि अगर हमने नष्टो मोह हो गए तो सारे विकारों पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं जिस तरीके से आपने बताया, परंतु हम तो बाकी जो मोटे विकार हैं उनमें ज्यादा लगे रहते हैं। ये तो बहुत सूक्ष्म बात हो गई जो नष्ट मोह की बात है। अभी तो इसके बारे में मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने सोचा भी नहीं कभी। तो हमें सीक्वेंस में किसको रखना चाहिए आगे, मतलब किस पे ज्यादा वर्कआउट करना चाहिए, किसके लिए एफर्ट, या फिर हम स्मृति लिप्ता अगर रहते हैं, हम अपने आप को भरपूर करते चलते हैं तो सारी चीज ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। ये मुझे आपके कन्वर्सेशन से आंसर मिला था, बट इस पे थोड़ा सा और प्रकाश डालें।
हर एक की जो जर्नी है अलग अलग है, चाहे मैं कुछ भी बोलूं लेकिन फिर ये सभी के लिए लागू होगा ये नहीं होगा, तो इसलिए अपने आप को देखने की जरूरत है। किसी में देह भान का संस्कार ज्यादा होता है, किसी में लोभ का संस्कार ज्यादा होता है, किसी में अहंकार का संस्कार ज्यादा होता है, तो इसलिए खुद को देखने की जरूरत है और कौन सा संस्कार ज्यादा है उस पर फोकस करने की जरूरत है। और अगर हमारे जो आध्यात्मिक यात्रा अभी अभी शुरू किए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुए है, तो सबसे पहला जो विकार है, जो काम विकार है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उससे हमारी शक्तियां बहुत जल्दी नष्ट होते हैं। तो उस पर ज्यादा फोकस करना है, और फोकस मतलब उस विकारों के बारे में नहीं सोचना है लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के बारे में सोचे, प्रॉब्लम्स के बारे में न सोचे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे, बस मेरे में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन ये ही है कि आत्मिक स्थिति का अभ्यास, पवित्रता का अभ्यास, स्वमान ज्यादा लेना है, तो सॉल्यूशन पर ज्यादा हम फोकस करें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके, तो फिर इजी हो जाएगा। हाँ जी
दीदी, जैसे कोई लौकिक कर्म जो हमें पहले करना चाहिए था पूरी एफिशिएंसी के साथ, हमने नहीं किया, मतलब हमारे पास सैंपल टाइम था 8-10 वर्ष का, पर अभी वो टाइम नहीं बचा है,
लौकिक रिस्पॉन्सिबिलिटी,
और उसके लिए हमारे को गिल्ट है और फियर है कि हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ठीक से निभाई तो आगे अभी क्या होगा, भविष्य में हम कैसे आगे चलेंगे, कैसे रहेंगे, तो वो गिल्ट और फियर से भी अटैचमेंट है, वो छूट नहीं रहा, बाबा को दे नहीं रहे, तो हाउ टू गिव इट टू बाबा एंड हाउ टू बिकम केयर फ्री ऑफ द सेम।
पास्ट इज पास्ट, जो पास्ट हो गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बैठिए कोई बात, पास्ट है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच सोच करके परेशान नहीं होना है, क्योंकि कहते हैं जब हम चलते हैं ना, एक पैर अगर कहीं अटका हुआ है कितना भी आप जोर लगाओ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो अगर आपकी बुद्धि पास्ट में अटकी हुई है, अरे मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, गिल्ट फीलिंग है, पास्ट में आपकी बुद्धि अटकी हुई है, कितना भी आप कोशिश करें आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो इसलिए बुद्धि को वहां से निकालने की जरूरत है। ठीक है, गलतियां हो गई, इंसान है, गलतियां कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बुद्धिमान इंसान वही है वो जो गलतियों को रिपीट ना करे। ठीक है, जो गलतियां हो गई, लेकिन फिर उसको ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, है ना, आगे चल करके मैं उसके लिए पैचअप करने के लिए, जो भी गलतियां हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने निभाया नहीं, अभी ज्यादा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले सकता हूं, या जो भी है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं भविष्य में या वर्तमान में, तो वो करने के बारे में सोचे, उस पर फोकस करे, पास्ट को भूलने की जरूरत है। और पास्ट को भूलने के लिए जैसे दो शब्द है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ओनली व्हेन यू फॉरगिव यू कैन फॉरगेट, दूसरों से गलतियां होती है तो उसको फॉरगिव करेंगे तो धीरे 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 उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है, यहां आपको खुद को फॉरगिव करने की जरूरत है, खुद को क्षमा करने की जरूरत है, या एक्सेप्ट करें कि ठीक है मेरे से गलती हो गई, मैं भी इंसान हूं, एक्सेप्ट कर ले ये ड्रामा है, लेकिन फिर ये गलती रिपीट ना हो, लेकिन इस गलती को फिर ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाए, एक्स्ट्रा समय भी दे करके मैं क्या कर सकता हूं, उसके बारे में सोचे और वो जरूर करें।
दीदी अभी मैं थोड़ी देर पहले डाइनिंग हॉल में था और वहां पे अभी शाम को चाय के साथ कुछ मुरमुरा कुछ ऐसे नमकीन दिया था और एक टेबल और उसके साइड में सारी चेयर्स और काफी ज्यादा जमीन पे मैंने देखा कि मुरमुरा गिरा हुआ है। मेरे विचार तुरंत चले कि अरे ये किसने किया, ऐसे क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। क्या ये मेरा सोचना सही है कि क्यों किया था, किसी ने ऐसे क्यों किया, ऐसे ऐसे खाते हैं क्या, ये विचार आना सही है नहीं है, अगर आता है। अच्छा दूसरी चीज ये भी है कि अगर मैं रोड पे चल रहा हूं, कैसे भी चल रहा हूं, चाहे साइकिल से चाहे स्कूटर से कार से, मुझे लगता है कि देखो वो गलत चला रहा है, वो रेड लाइट जंप कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, मुझे यही हर वक्त नजर आता है, तो ये इसको मैं कैसे ठीक करूं।
ये सब बातें हैं ना फिर आपको टेंशन में लाने वाली बातें हैं, ये व्यर्थ बातें हैं। क्यों व्यर्थ बात मैं कह रही हूं कि अगर आप उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए, अगर आप कुछ कर नहीं सकते राइट, आप जब कुछ कर नहीं सकते तो उसके बारे में सोच सोच करके फायदा नहीं है। वहां मुरमुरा गिरा था, वो हर शाम को होता है राइट हर शाम को होता है, ठीक है खाते खाते थोड़ा बहुत गिर जाता है, ऐसे मतलब जानबूझ करके कोई नहीं करता, लेकिन खाते खाते गिर जाता है और इतने सारे लोग हैं, एक एक व्यक्ति भी दो चार दाना गिराए तो इतना गिर जाता है, ये नहीं कि सभी ने इतना सारा गिरा दिया, ये नहीं है, हर व्यक्ति दो चार गिरा दिया तो इतना सारा हो जाता है। तो फिर क्या होगा, आप सब यहां आ जाएंगे तो वहां सफाई हो जाएगी, रात को जब आप भोजन पे जाएंगे तो वहां साफ मिलेगा आपको राइट। ये सोल्यूशन है हमारा, ठीक है हर दिन होता है, सोल्यूशन क्या है, ये पूरा होते ही फिर सफाई हो जाता है, साफ हो जाता है, ठीक है। और अभी रोड पे जा रहे ऐसे जा रहे ऐसे ड्राइव कर रहे, तो ड्राइव कर रही हूं लेकिन वो ऐसा आ रहा है, हर एक को गाली देती जा रही हूं, टेंशन में हूं, फायदा तो नहीं है ना। लेकिन मेरा फोकस क्या होना चाहिए, मैं कैसे गाड़ी चलाऊं, मैं अपने आप को कैसे बचा के चलूं, तो इस पर फोकस होना चाहिए। वो कैसा भी चलाए क्या कर सकते हैं, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो इसीलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ये हमारा पुराना संस्कार जागृत ना हो जाए। तो कई बार मैंने देखा है कि चला रहे हैं कि एक्सीडेंट, वो गाड़ी कार चला रहे हम लोग, लेकिन कोई एक बाइक आकर के इम्बैलेंस हो गया, थोड़ा टच हो गया, ठीक है, वो कलयुग के संस्कार क्या होगा, गाली देना शुरू करते हैं, दिखाई नहीं देता है क्या ये है वो के, हम ब्राह्मण हैं, हम कर सकते हैं ऐसे, योग कर रहे हैं, इतना सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा आप ब्राह्मण है, आपके व्यवहार से, है ना। आप कभी ऐसे गालियां नहीं दे सकते पब्लिक में, चले प्राइवेट में या पब्लिक में गालियां तो निकाल ही नहीं सकते हैं, आप ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे ना। तो इसलिए व्यवहार पर, बिहेवियर पर हमारा बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और एस्पेशली शब्द, कौन से शब्द हम निकालते हैं मुख से, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर निकल रहे हैं माना अभी तक मेरा तमोगुणी संस्कार गया नहीं है, संस्कार है अभी सतोगुणी बनना है पूरी तरह, 16 कला संपूर्ण कहां तक है वो चेक हो जाता है उसमें।
ओम शांति। एक चीज, बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स है वो तो हम थोड़ा सा धीरे धीरे कर लेते हैं, जैसे हम अपनी कोशिश करते हैं उसको पूरा करने की, लेकिन जो छोटे जो हैं, जैसे भी किसी से नाराज हो जाना या छोटी छोटी बातों में वो कर देना, ये मेरे को भी इस पे जो ना बड़ी वो करनी पड़ रही है मुशक्कत। ऐसा कौन सा राज है जो हम समझ नहीं पा रहे,
दूसरे नाराज होते हैं या आप नाराज होते हैं?
नहीं, मैं खुद नाराज हो जाता हूँ जब कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे मैं जो ना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, और कई बार जब ब्राह्मणों के अंदर ये बातें होती है ना तब और खराब लगता है।
बाबा की मुरली इसके लिए क्या है,
वो तो कह रहे हैं
नाराज कौन होता है
जो राज को नहीं जानता, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि कौन सा ऐसा राज है जो हम जान नहीं पा रहे।
हर व्यक्ति का जो संस्कार है अपना है,
हर व्यक्ति का रोल अपना है। कोई अभी सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई राजा बनेगा, कोई प्रजा, है ना। हम जो प्रजा क्वालिटी की आत्मा है, हम यही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये राजा बने। वो तो प्रजा की क्वालिटी है तो प्रजा ही बनेगा ना, तो उसका व्यवहार ऐसा ही रहेगा ना। कितने भी साल से वो ज्ञान में है, चाहे 15 साल, 20 साल, 50 साल से ज्ञान में है, लेकिन क्वालिटी ही वही है, तो फिर कितना भी आप एक्सपेक्ट करें वो वहां आए नहीं आ सकता। तो इसीलिए फिर ठीक है, उस आत्मा का रोल ऐसा है, उस आत्मा की क्वालिटी ऐसी है, लेकिन शुभ भावना ठीक है, कोई बात नहीं। वो भी मेरा भाई है, मेरी बहन है, आत्मात्मा भाई है, शुभ भावना रखें।
दीदी कभी कभी आपका जो इंटरेस्ट होता है वो भी अटैचमेंट हो जाता है उससे।
हाँ, right.
जैसे मुझे कुकिंग का शौक है तो लॉकडाउन में बहुत कुकिंग की, और कई बार माया उधर से ही आती है, फिर पुरुषार्थ रुक जाता है, मतलब किचन में ज्यादा टाइम बीत जाता है।
ये भी बैलेंस चाहिए, है ना। तो ठीक है, समय है, जरूरत है, तो जरूर करें। आपको शौक है और समय है आपके पास, वो जरूर करें, मना नहीं है उस बात के लिए शौक। लेकिन फिर उसमें क्या होता है, अगर दूसरे कोई कुक कर रहे हैं या कुक कर रहे, तो फिर उसमें गलतियां निकालते हैं, ये करते हैं, तो वो सब बातें होती है। तो इसीलिए अपने आप को मैनेज करने की जरूरत है। तो ठीक है, जहां जरूरत है, जहां टाइम है, उतना करें, लेकिन दूसरों को भी अप्रिशिएट करें। अगर वो गलतियां भी कर रहे हैं कुकिंग में या कुछ भी कर रहे हैं, कैसे नॉर्मल है, ठीक है, अप्रिशिएट करें।
थैंक यू दीदी।
जल्दी आएंगे, लास्ट क्वेश्चन, 6:15 हो गया।
दीदी ओम शांति। हम ज्ञान में चल रहे हैं, बच्चे आजकल बड़े हो गए हैं तो अब कहना नहीं मानते। जैसे वो लोग बिना नहाए धोए रहते हैं, तो अपने लोगों को तो ये रहता है कि अब इन लोगों के हाथ का खाना नहीं खाएंगे या पानी नहीं पिएंगे। वो किचन में आ जाते हैं तो मन में किचकिच लगती है, मगर वो लोग अब उनकी अपनी जिंदगी है, और हम लोग जैसे ज्ञान में चलते हैं तो वो मतलब थोड़ा सा ये बैलेंस, मतलब ये देखे कि ये लोग नहाते नहीं है, या जैसे किचन में घुस गए, मना मतलब घुसते नहीं है किचन में, फिर भी जैसे पानी वानी गर्म करना है, ऐसे करना है, और फिर वो इस बात से भी बच जाते हैं, मतलब
और बात जानबूझ करके वो करेंगे आपको तंग करने के लिए।
नहीं नहीं, वो जानबूझ के नहीं करते हैं, जैसे हो जाता है, मगर उनके आदत में ये नहीं है, मतलब कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है या हमें करना है, वो इस बचाव से मतलब वो करते रहते हैं, तो मन में थोड़ा सा इस बात से गुस्सा आ जाता है कि मतलब, और फिर जैसे
ठीक है, समझ में आया। ये घर की मालकिन आप है, राइट, एटलीस्ट किचन के मालकिन आप, राइट। कुछ डिसिप्लिन बना करना पड़ेगा, वो तैयार करना पड़ेगा, नियम तैयार करना पड़ेगा आपको। अगर ये करेंगे तो ही नाश्ता मिलेगा, ये नहीं करेंगे तो ये नहीं मिलेगा।
तो अगर लोग बाजार में खाए आते हैं, नहीं तो खाना कोई वो नहीं है, नहीं मिलता है, मगर बाजार में खा लेते हैं।
थोड़ा स्ट्रिक्ट नियम, कुछ ना कुछ, अगर वो जो चीज उनको पसंद है उसको नब्स को पकड़ करके चलना पड़ेगा। उनको जो बहुत पसंद वाली चीज है तो उससे वंचित करिए उनको।
देखिए प्याज नहीं बनता है ना घर का खाना, तो उन लोगों को वैसे भी ज्यादा नहीं भाता है, तो बाहर के में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं।
तो ठीक है, सिर्फ खाने की बात नहीं है, कोई भी ऐसी चीज उनको जो बहुत पसंद है तो उससे वंचित करिए उनको, या टीवी नहीं देख सकते हैं या कुछ ऐसी बात है तो उनको वंचित। तो इमोशनली आप गुस्सा नहीं, बाबा क्या कहते हैं, बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, गुस्सा नहीं करना है, युक्ति से बच्चों को चलाने की जरूरत है, प्यार से चलाने की जरूरत है, लेकिन डिसिप्लिन भी चाहिए। हाँ, पसंद की चीज, लेकिन प्याज लहसुन नहीं होगा ना, वो प्रॉब्लम है उनको।
नहीं, बच्चे वैसे बहुत सहयोगी हैं, प्याज लहसुन का मतलब कभी ये नहीं कहते कि किचन में बनाओ या करो, लेकिन वो नहाते मतलब नहाने में जैसे देरी करते हैं, अपना आराम से उठेंगे, आराम से नहाएंगे, सुबह को जैसे कहें कि भाई मदद करो, किस बहाने थोड़ा सा, उस सब बात में सहयोगी हैं, मगर थोड़ा सा कहना चाहिए, बच्चे रहते हैं या कुछ भी है, ऐसा रहता है घर में,
तो डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। आप जितना स्ट्रिक्ट रहेंगे इस बात को लेकर के, तो वो फिर फॉलो करेंगे, भले पहला दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, लेकिन फिर उनको फॉलो करना पड़ेगा, इमोशनली उनको पकड़ करके रखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे चीज ढूंढिए उनको, कैसे उसको, क्योंकि हर चीज का फॉर्मूला, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई होता है, कौन से ऐसे डिसिप्लिन लाए ताकि फिर वो सारा नियम फॉलो करे, है ना। इसमें ढीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहे। ठीक है, ओम शांति।